विशेष बाबा ने ध्यान खिंचवाया, जो जो प्रतिज्ञा किए है उसको तोड़ना नहीं है। तो सबसे पहली तो बात आज की मुरली में, आप रोज रोज जो मुरली सुनते हैं उसके बाद उसका चिंतन करते रहना, और मुरली की कोई एक बात को लेकर के डीप में जाना। हम लोग तो क्या करते हैं, मुरली सुनने के बाद एकांत में जाकर के आज के मुरली की मूल शिक्षा क्या रही, चाहे वरदानों से लो, चाहे स्लोगन से लो, चाहे धारणा से लो, कोई एक विशेष बाबा के, क्योंकि बाबा की मुरली कोई ना कोई विशेष टॉपिक के ऊपर चलती है। तो आज की मुरली विशेष एक तो हमें विकर्म नहीं करना है, माया के धोखे से बचना है, बंधन मुक्त बनना है, और संकल्प को बचाना है। ये दो चार बातें मूल, और एक फरिश्ता की डिग्री लेनी है। बस एक एक शब्द याद रखो पूरी मुरली आपको, फिर सारा दिन उसका चिंतन। कभी कभी हमें किसी का देह आकर्षित होता है, देह क्या है, जैसे लैट्रिन बाथरूम कफ एक अच्छी सी पैकिंग में रखेंगे, उसको बहुत बढ़िया सा सजा करके सामने रखेंगे, वो लेटरिन बाथरूम वाला वो जो बॉक्स आपको आकर्षित करेगा, कहेंगे इसको उठाओ जल्दी यहां से लेके चलो। तो शरीर क्या है, हर एक का शरीर अंदर क्या है, उसके अंदर, उसके अंदर लेटरिन है, बाथरूम है, कफ है, मांस है, और ऊपर से बहुत सुंदर एक पैकिंग है। अगर इस भाव से शरीर को देखेंगे तो शरीर कभी भी आकर्षित नहीं हो सकता। अगर किसी का शरीर आकर्षित होता है, आप बिना चमड़ी का उसका शरीर देखो। इसलिए खुद के शरीर के भी आकर्षण से दूर रहना है, और दूसरे के शरीर के भी आकर्षण से दूर रहना है। शरीर के आकर्षण में कभी नहीं आना। शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा के तरफ देखना है, आत्मा से बात करनी है, अन्यथा बाबा ने कहा ना विकर्म बन जाएंगे। तो इसलिए शरीर के कभी भी लगाव में नहीं आना, अशरीरी बनना है। खुद का अपना शरीर के ऊपर प्रयोग करो, ये चमड़ी का बना हुआ शरीर है, ये शरीर कैसा है, चमड़ी का है। किसी का भी शरीर देख करके आकर्षित नहीं होना है, जितना शरीर के आकर्षण से दूर। उड़ता पंछी तो मेरा लगाव किसी से है, निशानी क्या है, जहां लगाव है वहां बुद्धि जाएगी बार बार। अगर लगाव है, जिसे वो कहते हैं ना, एक पांच छह लोग सवेरे सवेरे, बाजू में गांव था, बीच में तालाब था, तो वहां कुछ मार्केटिंग करने के लिए रोज गांव के लोग जाते थे, लेकिन बीच में नौका रखी थी, तो नौका में बैठते थे, वल्ले घुमाते घुमाते पहुंच जाते थे सवेरे। तो दो चार लोग सवेरे 4 बजे बैठे हो नौका में, बातें करते वल्ले घुमाते घुमाते घुमाते, 1 घंटे के बाद उनको लगा पहुंच गए होंगे, दिन निकल गया, लेकिन देखा वही की वही थे। क्यों? उन्होंने वो रस्सा तोड़ा नहीं था। बोले घुमाते रहे अंधेरे में, लेकिन वही के वे रहे। इसी तरह मेरी बुद्धि का लगाव किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में है, हम वल्ले भी घुमा रहे, भट्टी करने के लिए आ रहे, रोज सेंटर पर जा रहे, मधुवन जा रहे, वल्ले घुमा रहे, लेकिन बुद्धि अगर कहीं फंसी है वही के वे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए मेरी बुद्धि कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ बांधी न हो, बुद्धि का लंगर टूट जाए तब वहां बाजू में पहुंच जाएंगे, तब नहीं तो सत्युग में आएंगे, सत्युग का दिन जब निकलेगा तो वही कोई नजर आएंगे। इसीलिए बंधनों के रस्सों को तोड़ना है, जो पिंजरे में फंसता है, देह के पिंजरे में फंसता है वो उड़ नहीं सकता, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए ना गृहस्थी का बंधन है, अब गृहस्थी भी क्या समझो, हम मधुवन निवासी, हम सभी कौन है, मधुवन निवासी, हम मधुवन से आए हैं, और जो घर है घर को भी आप क्या समझो, आपका सेवा का क्षेत्र है, वो सेवा स्थान है। मधुवन ने मधुवन से बाबा ने आपको उस सेवा स्थान पर रखा है, मेरा कुछ भी नहीं है, जिस पति के साथ रहते हैं वो पति की सेवा करने के लिए बाबा ने भेजा है, क्योंकि उस आत्मा ने आपको इस कल्प में बहुत मदद की है, आपको बहुत सहयोग दिया है, इसीलिए उसका कर्मों का हिसाब चुकत करने के लिए बाबा ने आपको वहां भेजा है, वो आपका नहीं है, बाबा ने उनकी सेवा करने के लिए आपको भेजा है। जब ये भाव से सेवा करेंगे लगाव नहीं होगा, उसे नफरत भी नहीं आएगी, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इसलिए यह समझो कि हम मधुवन निवासी हैं, मधुवन में बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हम इनकी सेवा कर रहे हैं, ये मेरा ना पति है ना पिछले जन्मों में पति था, अब हम उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, इसको कहेंगे ट्रस्टी। लगाव भी नहीं रहेगा, जैसे कहा ना दादी प्रकाशमणि सबको प्यार करती थी, हम लोगों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमारे किसी से लगाव नहीं था, उनको पता है कि ये बाबा का बच्चे है, हमको उनको संभालना है अच्छी तरह, लगाव से नहीं, निस्वार्थ इसको कहते हैं, तो निस्वार्थ सेवा करो। अगर मेरा समझ करके करेंगे फिर कहेंगे मेरा कहना नहीं माना, मेरा ये नहीं करा, फिर दुख भी आएगा, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। इसलिए ट्रस्टी होकर के हमें घर में भी रहना है, और जो पिंजरे के पिंजरे में जीवन मुक्त है वही फरिश्ता है। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी की यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, डिग्री लेने के लिए। डिग्री किसको मिलेगी, जो हल्के रहते हैं, जो भी आपको सेवा दिए, पति के साथ काम करने के लिए दिया है, ऑफिस में काम दिए हैं, हर कर्मों में हल्के रहो। जो भारी रहता है वो डिग्री नहीं ले सकता, और जिसको डिग्री नहीं है सत्यु की नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी जैसे कोई यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरी तो मिलती है, भूखे नहीं मरते, लेकिन कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाता है। इसी तरह अगर मैं हल्का नहीं रहूंगा, यहां फरिश्ता नहीं बनूंगा, तो सत्युग में मुझे जिम्मेवारी बड़ी नहीं मिलेगी, पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते जिम्मेवारी में हल्के रहो, जिम्मेवारी बाबा की है, बाबा देख रहा है, बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे दिल से उसको करना है, उसके सफलता असफलता उसके पर छोड़ो, उसकी चिंता नहीं करना है, इसको कहते फरिश्ता। और तो बाबा ने आज की मुरली में ये बातें अंडरलाइन की, एक तो हमें ट्रस्टी रहना है, फरिश्ता हल्का बनना है, विकर्म कोई नहीं करना है। अगर विकर्म होगा सजा मिलेगी, ब्राह्मण बनकर के कोई विकर्म नहीं करना है। कई कहते हम जो पहले यहां आए थे बहुत अच्छा योग लगता था, बहुत प्यार मिलता था, लेकिन जैसे बाबा के बन गए आगे बढ़ते गए और बोझ पड़ता गया, क्यों? विकर्म शुरू किया। बाबा का बनकर के कोई विकर्म नहीं करना। एक महाभारत में एक दृष्टांत आता है, पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, तो सबको लगता है दोनों में से अभी राजकुमार किसको बनाए जाए, तो सब लोग बोलते हैं कि जो योग्य है उनको राजकुमार बनाए जाए। तो सबको लगता है दोनों में से, कौरव में से योग्य है या पांडव में से योग्य है। तो उनकी अचानक परीक्षा ली गई, एक दरबार बिठाया था और उस दरबार में अचानक चार लोगों को पकड़ करके लाया। जब चार लोगों को पकड़ करके लाया तो सबसे पहले युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर समझो तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम इन लोगों को क्या सजा दोगे? इन चार लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। तो सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, तो दुर्योधन उठ करके जोर से करता है, अच्छा मर्डर किया है चारों ने, इनके भी गले काट दो, फटाफट इनके भी मर्डर कर दो, मर्डर का बदला मर्डर। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसको पूछा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तुम क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहते मैं इनकी जाति पूछना चाहता हूं चारों की। तो सब कहते हैं जाति से क्या मतलब है, वो शकुनी बोलता है। तो सब लोग बोलते नहीं नहीं बताओ जाति। तो एक शूद्र था, दूसरा वैश्य था, तीसरा क्षत्रिय था, चौथा ब्राह्मण था। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने में ये भी शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, और कहता है इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, और कहता है इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देनी। मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है, तो भी इतनी गलती की, इसके लिए क्या सजा देना है मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ये कहां, ये एग्जाम्पल कोई साधारण बात नहीं है, ये हमारे अपने यादगार हैं। आज हम भी क्षुद्र थे, गलतियां की माफ हो सकते हैं, वैश्य में थी माफ हो सकते हैं, क्षत्र में की माफ हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के हम कुछ करेंगे उसकी सजा मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, क्योंकि प्राप्ति भी बहुत ज्यादा है, जितनी प्राप्ति है उतना घाटा भी है, इसीलिए ब्राह्मण बनकर के ज्ञानी बनकर के जाने अनजाने गलती नहीं करनी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, नहीं तो अंतिम समय जैसे कहते ना पांडव की विजय हो गई, और विजय होने के बाद पांडव पहाड़ी पर गए, उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत, 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता। जब जा रहे थे अचानक द्रौपदी गिर गई, फिर ऊपर गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, फिर आगे गया अर्जुन भी गिर गया, फिर युधिष्ठिर ही स्वर्ग में गया, और साथ में कहते कुत्ता भी था उनके साथ में, कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। ये सब यहां का यादगार है, हमारी भी विजय होगी, हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट अबू अली नहीं, परम धाम। लेकिन उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। तो द्रौपदी क्यों गिर गई? कहां युधिष्ठिर ने, भीम बहुत उसकी महिमा करता है, सभी पांडवों को बुलाया करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए जंगल में रही, तक त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनते रहता है, कहा कि उसका सबके साथ प्यार था लेकिन एक अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था, उसका दिल अर्जुन के साथ लग गया, इसीलिए वो गिर गई, पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकी। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे किसी देहदारी से दिल नहीं लगाओ, अगर लगाएंगे सजा खाएंगे। आगे गया, नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था, गिर गया। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। कहीं को लगता ना, मैं तो सहयोग किया, मैं ये किया, उसका भी अभिमान आया, वो भी फेल। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। भीम गिर गया, अपने अंदर बल है, ताकत है, उसका अभिमान था। और अर्जुन का तीर चलाने का अभिमान। तो कहने का मतलब, अगर हमें अंदर अभिमान है तो भी हम फेल हो जाएंगे। अंतिम समय हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा, माउंट आबू, माउंट आबू वाली नहीं, परमधाम के पहाड़ी में। लेकिन अगर हमने ब्राह्मण बनकर के कुछ गलतियां की, बाबा के पास हम जो भी गलती करते हैं उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, बाबा के पास हम जो भी कुछ चोरी छिपके कुछ गलत काम करते हैं, श्रीमद का उल्लंघन करते हैं, सब फोटोग्राफ्स बाबा के पास होते हैं। जब परमधाम पहाड़ी पर जाएंगे, वापिस जाएंगे, तो बाबा दिखाएगा, ये फोटो तुम्हारा है या किसी और का है? बाबा कहेगा, मैं तुमको राजा रानी बनने के लिए इतना देने के लिए हर जन्म में मैं ऐसा बनाने वाला था, तुमने ये गलती की, क्या तुम ये लेने के लायक हो? उस समय चेहरा बाबा कहेगा सब कैंसल हो गया। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे छोटी सी क्षणिक सुख के पीछे गलती नहीं करनी है। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है। तो चलते चलते आज भी बाबा ने भट्टी की बात बताई, अटेंशन, ब्राह्मण बनकर के अब गलती नहीं करनी है। और उसके लिए इलाज भी बताया, बार बार आत्मा समझो, अशरीरी बनो। और खास तो गलती होते हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई एक संस्कार होते हैं, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। जो ज्ञान और योग से अपने आप को सच्चा सुख नहीं देता, तो आत्मा विकारों के वश हो जाते हैं, संस्कारों के वश हो जाते हैं, अपने पुराने संस्कार के वश नहीं होना है। और इसलिए रोज अमृत वाला उठ करके, जैसे पेशेंट होता है ना, पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर जब चक्कर लगाता है वार्ड में, अपनी बीमारी बताता है, इसी तरह हमें भी क्या करने, जब अमृत वाला बाबा इस हॉस्पिटल में चक्कर लगाता है, दुनिया हॉस्पिटल है, तो उठ करके बाबा से बातें करके बताओ, आपको जो जो कुछ होता है, कोई संस्कार तंग करता है, कोई बुराई है, बाबा को सुनाओ, बाबा मैंने आपकी मुरली, जैसे डॉक्टर जब पेशेंट जब चक्कर, डॉक्टर जब चक्कर लगाता है, पेशेंट करता है, डॉक्टर जी मुझे ऐसा ऐसा हुआ, सिर दर्द हुआ, ये हुआ, तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। इसी तरह हमें भी बाबा को सुनाना है, बाबा को सुनाएंगे तो बाबा उसका इलाज करेगा। और कभी भी अपने संस्कारों का भोजन नहीं दो। अब कई क्या करेंगे, टीवी भी देखेंगे, सीरियल भी देखेंगे, तो उससे क्या हो गया, वो संस्कार का भोजन दे रहा है। अब और भोजन मिलेंगे तो संस्कार जागृत होता है, फिर गलती हो जाते हैं, फिर कहते हैं ओ बाबा ये क्या हो गया। इसीलिए अब हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। जैसे बता ना, कल की बाबा की मुरली थी, सभी कौन बन गए, पार्वतियां। हमारी पहली स्थिति होती है जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो सबसे पहली स्थिति होती है गोपिका की। हम सब गोपिका बन करके, क्योंकि 5000 साल के बाद ज्ञान मिला है, बड़े लगन में होकर के, मगन होकर के आते रहेंगे सेंटर पर। जब सेंटर पर आएंगे एक महीना दो महीने के बाद, धीरे धीरे आसपास वाले लोगेंगे तुम कहां जाते हो, विघन डालना शुरू करेंगे। जब विघन डालना शुरू करेंगे उसके बाद माया अलग अलग रूप से आएगी, चाहे लोकलाज के रूप में आएंगी, समस्या के रूप में आएंगी। उस समय दूसरी स्थिति आती है सीता की। जो माया को समझ लेता है ये रावण है ये माया है, जो बच जाएगा, अगर रावण के अंदर फंस जाएंगे, लोकलाज वश होकर के होंगे, आलस आले बेलपन में आएंगे, फंस जाएंगे, तो फिर पार्वती की स्थिति नहीं आ सकती। जो रावण के माया को समझ जाता है उसकी स्थिति आएगी पार्वती की। पार्वती अर्थात जो रावण से बच जाता है वो पार्वती बन जाता है। पार्वती अर्थात उसको बाबा बहुत गहरी बातें सुनाएगा, अमर कथा सुनाएगा, और जो अमर कथा गहरी सुनता है उसकी फिर स्थिति आएगी सरस्वती की। सरस्वती बनेगा अर्थात नॉलेजफुल बनेगा। नॉलेजफुल बनने के साथ साथ दुर्गा की स्थिति आएगी, अपने दुर्गुणों के ऊपर नाश करेगा। संतोषी मां की स्थिति आएगी, उसके साथ साथ शीतला की स्थिति आएगी, फिर वो सेवा कर सकेगा, अपने खुद के भी राक्षसों को मारेगा, बुराई को मारेगा, अन्य आत्माओं को भी सहयोग बन करके उसके अंदर की बुराई को मारेगा। और तब दिवाली होगी। दिवाली अर्थात इस दुनिया का भी विनाश होगा। इसलिए अब हमारी स्थिति कौन से चेक करो, गोपिका की स्थिति है, सीता की स्थिति है, पार्वती की स्थिति है, या दुर्गा काली की स्थिति है। हम क्या करते, दूसरे के ऊपर काली बनते हैं और अपने ऊपर शीतला बनते हैं। दूसरे के ऊपर कभी काली नहीं बनना है। गुस्सा करना मतलब काली बन गया, अपने ऊपर काली बनो, अपने बुराई के ऊपर काली बनो, दूसरे के लिए शीतला बनो, शीतल बनो, कभी किसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। इसीलिए देवियों की स्थिति ये प्रैक्टिकल, अब हमारा वर्तमान समय अनुसार हमारी स्थिति चाहिए शीतला की, दुर्गा की, संतोषी मां की, जिसको बाबा भी आजकल कहते हैं ना, बच्चे सदा खुश रहो, क्योंकि बाबा ने इतना दिन से, कितना साल से पढ़ा रहे, मूर्तियां बना बना करके सब तैयार की, अब मूर्ति का फिनिशिंग चल रहा है। फिनिशिंग किस में होता है, चेहरे पर। जिस मूर्ति का चेहरा जितना अट्रैक्टिव उसकी कीमत भी ज्यादा, इसीलिए बाबा अब सबका चेहरा बना रहे। और चेहरा कैसा चाहिए, एकदम खुश, कोई गाली भी दे तो भी खुश, गाली दे गुस्सा करेंगे, कीमत कुछ नहीं होगी देवी की। फिर लोग किनारा करेंगे, दर्शन देना भी पसंद, लेना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए चेहरे में सदा खुशी चाहिए। वही खुश रह सकता है जो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। देवी का पोज कैसा है, वरदानी हाथ है, मुस्कुराता चेहरा है, कोई गाली भी देता हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। और हमारी स्थिति, कोई गाली देता है 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे, कभी गुस्सा आएगा तो उंगली तोड़ देंगे, इसका तो सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई मंदिर में पोज है, ऐसा पोज है, ऐसा पोज नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा खुश रहो। अब हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई पड़े, प्रैक्टिकल हमारे अंदर, और उसके लिए हमारे पास सहन शक्ति सदा साथ हो, हम सहन शक्ति के देवी बने, सहन शक्ति की देवता बने, हमें सब कुछ सहन करना है, एक जन्म में सहन करेगा, युगों युगों तक पूजा होगी। विघ्नों का कारण है, गलतियों का कारण है सहन शक्ति की कमी। जिसके पास सहन शक्ति नहीं उसको विघ्न आते हैं, इसलिए हमें सब कुछ सहन करना है। सहना यही हमारा गहना है। हमारे गहने उतर कब जाते हैं, विधवा कब बन जाते हैं? जब सहन शक्ति नहीं है तो सब गहने उतर गए। फिर जो सहन करता है उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहेगा। जो सहन करता वही आत्माभिमानी स्थिति में रह सकता है। सहन नहीं किया, निगेटिव विचार चले, तिलक मिट गया, दृढ़ता का कंगन भी टूट गया, उमंग के पायल भी टूट गए, चेहरे पर की मधुर मुस्कान की लाली भी मिट गई, मुस्कान के बजाय गंभीर हो जाएंगे। इसलिए सहना यही हमारा गहना है, सहनशील बनकर के रहना है। कई कहते कि क्या मुझे ही सहना है? सहन करना है, सहन करने से ही हमारे पर फूल पड़ेंगे, पूजा होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करके जाना है, ठीक है। इसीलिए कभी भी इस 2015 में कोई भी गलती हमारे से न हो जाए, ये अटेंशन रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। इसलिए खास जो हमारे अंदर जो संस्कार है उस संस्कार के ऊपर ध्यान देना है। जितना रोज ज्ञान और योग से सुख लेंगे, जितना ज्ञान योग से सुख लेंगे उतना संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। और मुरली सुनते समय बड़े ध्यान से सुनना है। मुरली डिस्पेंसरी है, काम क्रोध लोभ मोह हर बीमारियों की दवाई है। तो मेरी बीमारी क्या है और बाबा ने आज कौन सी दवाई दी, उसको ध्यान से सुनने के लिए मुरली सुनने से पहले योग करके मुरली सुनना है, तब आपकी दवाई आपको मिल जाएगी। मुरली की बातें बहुत गहरी होती है, महीन होती है। इसलिए मुरली की एक एक बात जब सुनते हैं उस समय हमें एकाग्रता चाहिए। जिसमें एकाग्रता नहीं है वो मुरली की शाम को पूछेंगे, आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छा थी। क्या थी? हाँ बहुत अच्छा थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा थी। अच्छा अच्छा ही कहेंगे। क्यों? मुरली सुनते समय योग नहीं किया था। जो योग नहीं करेंगे मुरली शाम तक उड़ जाएंगे। इसीलिए मुरली से आनंद लेना है, ध्यान से सुनना है। और जो मुरली ध्यान से सुनता है उसको नशा चढ़ेगी, वो आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा, उसको सच्चा सुख मिलेगा। और जिसको सुख मिलता है उससे गलतियां नहीं होगी, ठीक है। ओम शांति।
केळद नंतर एकांतदल्ली ಏನೇನ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ನಡೆಸ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ವರ್ದಾಂತಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಮುರುಳಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಕರ್ಮಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವರು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಆಗೋದು ಯಾರು, ಯುವರಾಜ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರೋ ಅವರಾಗಲಿ. ಆಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ರಾಜ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಕೊಲೆಗೆ ಕೊಲೆನೆ ಉತ್ತರ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ತಲೆ ಕಡಿದ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠರನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇನ್ ನ್ಯಾಯ ನೀಡ್ತೀಯ? ಆಗ ಆತ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪರಾಧಕ್ಕೂ ಜಾತಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ, ಅವ್ರ ಜಾತಿ ನಿನ್ಗೇನಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆಗ ಆತ ಕೊಡುವಂತಹ ತೀರ್ಪು, ಶೂದ್ರನಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕು, ನಂತರ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ 6 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಇದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ವೈಶ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡ್ಗಾಗಿ ಏನೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವನ ಧರ್ಮನೇ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಶೂದ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈಗಲೂ ನಾವು ಅಪರಾಧನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ದ್ರೌಪದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ನಕುಲನೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಹದೇವನೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅರ್ಜುನನೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಭೀಮನೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಕೇವಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಅಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಳೆ, ಭೀಮ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ಇವಳೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಸು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಲು, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೂ ಬಂದ್ಲು, ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋದ್ಲು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಂವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಳ ಸೆಳೆತ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಸಹದೇವ ಬೀಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನಕುಲ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿದುಕ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ವರದಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲಗಾವಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭವದ ಕಡೆ, ಅವರು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ, ಮೊದಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು, ಆತರ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಅವರು ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಸಹದೇವ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ತಾನು ಸಹಯೋಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದೇ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅನೇಕರು ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದರೂ ಹೀಗೆ, ಆ ಥರ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅರ್ಜುನನೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಾಣ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಂತರ ಭೀಮ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗರ್ವನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈಗ ಬಾಬೋರ ಶ್ರೀಮತ್ತಂತೆ ನಡೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ಬಾಬೋರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ನಾಯಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಾಬೋರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಮುಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ನೆ ಮುರಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು. ಬಾಬಾ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಂತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ನಶೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. 5,000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ವಿಘ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇದೊಂದು ವಿಘ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಮಾಯಾ ರಾವಣ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅವರು ಸೀತೆಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾವಣನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇದು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾರ್ವತಿಯರಾಗ್ತಾರೆ. ರಾವಣನಿಂದ ಬಚಾವಾದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪಾರ್ವತಿಯರಾಗ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಸರಸ್ವತಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನದ ದೇವಿಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ನಂತರ ದುರ್ಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಗಳಿಸ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ದುರ್ಗೆ ಆದ ನಂತರ ಶೀತಲಾದೇವಿನೂ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶೀತಲವಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಂತೋಷಿಮಾನೂ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವಿಯರು ನಾವಾದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಣ್ಣವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ತಿಲಕವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪಾರ್ವತಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ತಿಲಕ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ತಿಲಕ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಢತೆಯ ಕಂಕಣನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಗೆಜ್ಜೆನೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣನೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ್ಪೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪಾರ್ವತಿಯರಾಗಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಂತಹ ಶೀತಲ ದೇವಿಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೂರಕ್ಕಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಯಾವ ದೇವಿ ಮುಖನೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಏರ್ಪೇರಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾರೇನೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಶೀತಲವಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಅಂಥ ಮೂರ್ತಿ ನಾವಿವಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಟ್ಕೆ ಮುರಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾರು ಮೂರ್ತಿ ಇದ ಥರ ಫೋಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣವರು. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಫೋಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸದಾ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಸದಾ ಶೀತಲವಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಸದಾ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಣ್ಣವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮುರುಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಯೋಗನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತೇನು ಮುರುಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಓ ಇವತ್ತು ಮುರುಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು? ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಒಂದಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೇನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮುರುಳಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಸಹ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ಪ್ರಭು ಸೇ ಮನಾತೆ ರಹೋ, ಮಿಲನ್ ಪ್ಯಾರೇ ಸದಾ ಖುಷಿ ರಹೋ. चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया.
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया.
खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो.